आर्यांश को रेस्टोरेंट में काम करते देखकर दीवा को और भी अजीब लगा। साथ ही जब सुमन हॉस्पिटल आई थी तो वो भी महंगे टेस्ट ना लिखने के बारे में कह रही थी। दीवा को वहां आए हुए एक दिन बीता था और इस एक दिन में वो दो बार आर्यांश से तो एक बार सुमन से टकरा गई थी। इन सबसे आर्यांश की स्थिति के बारे में वो जितना भी सोचने की कोशिश करती, एक ही नतीजा निकल कर आ रहा था कि आर्यांश एक मुश्किल भरी जिंदगी बिता रहा है। ऊपर से दीवा ने उसे मदद भी ऑफर करने की कोशिश की, पर आर्यांश ने साफ मना कर दिया। आर्यांश को इस तरह अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते देखकर दीवा को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे में दीवा ने आर्यांश की स्थिति के बारे में उसकी फैमिली को बताने का सोचा। दीवा कॉल करने जा ही रही थी कि पेशेंट उसके केबिन के आगे इकट्ठा हो गए थे। मजबूरन दीवा को फिलहाल उसकी फैमिली को कॉल करने का प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। ये दवाइयाँ ठीक से लीजिएगा और प्रॉब्लम सही हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि दवाइयाँ बीच में छोड़ सकते हैं। पूरे डोज लेने जरूरी होते हैं। ये खत्म हो जाने के बाद आप ठीक भी हो जाएं, फिर भी एक बार दिखाने के लिए अस्पताल आइएगा, दीवा अपने आखिरी पेशेंट को समझा रही थी। अपने आखिरी पेशेंट को अटेंड करने के बाद दीवा ने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 8 बजने को आ गए थे। इतना लेट नाइट शिफ्ट दीवा ने मोस्टली इमरजेंसी के टाइम में ही किया था। टाइम देखते ही दीवा ने सिर पकड़ लिया था। वो थके हुए स्वर में बोली, ये तो आइडियल डिनर टाइम भी निकल गया है। अगर इतना ही लेट फ्री होंगे तो खाना कब बनाऊंगी, और इतना थकने के बाद खाना बनाने का मन किसका करता है। फिलहाल तो दीवा का यही मन कर रहा था कि वो कुछ देर अच्छी सी नींद ले। दीवा ने अपना सिर अपने सामने रखी टेबल पर टिका दिया था। वो काफी ज्यादा थक गई थी। दीवा की आंख लगनी ही वाली थी कि इस बीच वैशाली वहां पर आई। उसने दीवा को जगाने के लिए टेबल को नॉक किया, जिससे दीवा हड़बड़ाकर जल्दी से उठ गई थी। मैं थक गई थी, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। डोंट वरी, आपकी अकेले की यही हालत नहीं है। मैं बहुत से मेडिकल स्टाफ को इसी तरह उठाकर घर जाने के लिए कह रही हूँ। किसने सोचा था कि पहला दिन ही इतना थका देने वाला होगा, और वेलकम के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वैशाली बोली। वो खुद भी पूरे दिन लगातार काम करके थक चुकी थी। दीवा उठी और उसने अपना बैग और बाकी जरूरी सामान उठा लिए थे। चलते हुए उसने पूछा, शिव कहाँ है? यहीं पर है, वो सो गया है, वैशाली ने जवाब दिया। क्या, सो गया है? लेकिन अभी तो उसने कुछ खाया भी नहीं, दीवा ने परेशान स्वर में कहा। वो अंदर एक कमरे में गई तो शिव पेशेंट के बेड पर सोया हुआ था। उसे सोते देखकर दीवा ने आह भरते हुए कहा, मेरा बेबी, कुछ खाया भी नहीं और थककर सो गया। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, मेरे साथ साथ तुम्हें भी सफर करना पड़ रहा है। दीवा ने शिव को गोद में उठाना चाहा, पर उसके हिलाने पर शिव जाग चुका था। वो आंखें मसलते हुए उसकी तरफ देखने लगा। भूख लग रही है क्या? दीवा ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, जिस पर शिव ने हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे भी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं घर जाकर कुछ खाने को बनाऊं, लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, दीवा ने खुद से बड़बड़ाकर कहा। उसने शिव को पानी देकर उसकी नींद भगाई और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाने लगी। अस्पताल से घर जाने के 5-7 मिनट के रास्ते में दीवा ने प्रार्थना को बहुत याद किया। मुंबई में काम करते वक्त भी दीवा को इस तरह हॉस्पिटल से आने में कई बार देर हो जाती थी, लेकिन उसके घर आने पर प्रार्थना खाने से लेकर उसके रिलैक्स करने की बाकी चीजें तैयार रखती थी। मॉम, आई मिस यू सो मच, दीवा ने सिर पकड़कर कहा। शिव को घर ले जाने और बाकी जरूरी फॉर्मेलिटी करते हुए दीवा को घर पहुंचने तक 8:30 बज चुके थे। आसपास की छोटी बड़ी दुकान और रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके थे। ऐसे में दीवा को कुकिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीवा शिव का हाथ पकड़कर अपने घर के पास पहुंची ही थी कि उसे आंगन की डिम लाइट में कोई वहां खड़ा हुआ दिखाई दिया। दीवा ने उसे देखकर आंखें छोटी की, पर फिर भी उसका चेहरा ठीक से समझ नहीं आया। दीवा शिव को लेकर आगे पहुंची। उसके कदमों की आहट सुनकर वो उसकी तरफ पलटा। वो आर्यांश था। उसे देखकर दीवा उससे टकराने से पहले ही कुछ कदम पीछे हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? कहीं तो मुझे फिर से स्टॉक तो नहीं कर रहे हो? दीवा सख्त आवाज में बोली। तुम लंदन या मुंबई में नहीं रह रही हो, ये शहर बहुत छोटा है। ऊपर से यहाँ हर कोई जानता है कि अस्पताल के लिए नया मेडिकल स्टाफ आया है। पूरा स्टाफ इसी बड़ी सी बिल्डिंग में रह रहा है, आर्यांश ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। हाँ, जो भी है, लेकिन यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इसे स्टॉकिंग ही कहते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पिछली बार की तरह उल्टी सीधी हरकतें करके मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दोगे, तो मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं वो पहले वाली दीवा नहीं रही हूँ, दीवा आर्यांश को डांटने लगी थी। जबकि आर्यांश बिना किसी शिकायत के दीवा की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने बोलना बंद किया तो आर्यांश ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ा बैग दीवा को देते हुए कहा, खाना देने के लिए आया था, सुमन माँ ने भिजवाया था, मैंने उन्हें मना किया था, पर तुम जानती हो कि उन्हें तुमसे कितना अटैचमेंट है, वो नहीं मानी, मजबूरी में आना पड़ा, और मैं भी वो पहले वाला इंसान नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है, दोबारा मत आना, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे घर का कुछ भी, दीवा ने मुंह बनाकर कहा और शिव को लेकर आगे जाने लगी। लेकिन आर्यांश ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया था। तुम क्या चाहती हो, ये खाना वेस्ट हो जाए? कितना सोचकर उन्होंने प्यार से तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई थी, लेकिन तुम, खैर छोड़ो, मैं इसे वापस ले जाता हूँ और उनका दिल न दुखे इसलिए किसी और को दे दूंगा, आर्यांश ने कंधे उचकाकर कहा। उसने दीवा को खाना रखने के लिए जिद नहीं की। दीवा ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और आर्यांश के हाथ से टिफिन ले लिया था। वो बोली, सिर्फ उनके लिए मैं ये ले रही हूँ। आगे से उन्हें कैसे मना करना है तुम खुद देख लेना, और ऐसे बार बार मेरे सामने मत आया करो। आर्यांश ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था और वहां से जाने लगा। दीवा हैरानी से उसे देख रही थी। वो धीरे से बड़बड़ा कर बोली, इतनी जल्दी मान गया, वो भी बिना किसी बहस के? सच में बदल गया है या ड्रामा कर रहा है? दीवा आर्यांश को जाते हुए देख रही थी, तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ा और दीवा का ध्यान टूट गया था। शिव को साथ लेकर दीवा अंदर आ गई थी और उसने देखा खाना अभी भी गर्म था। दीवा ने टिफिन खोला और उन दोनों के लिए सर्व किया। उस टिफिन में न सिर्फ दीवा की फेवरेट चीजें बनाई हुई थी बल्कि साथ में कुछ स्नैक्स भी थे जिन्हें स्टोर करके रखा जा सके। थैंक यू सो मच सुमन माँ, आपको नहीं पता कि आपने इस वक्त मुझे ये खाना भेजकर मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मेरा कुकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था और इन स्नैक्स के साथ मुझे कल ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा। आप आज भी उतनी ही प्यारी हैं, दीवा खुश होकर बोली। दीवा अंदर आराम से खाना खा रही थी। वहीं उसके घर से थोड़ी ही दूर खड़ा आर्यांश उसके घर की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। आर्यांश अपने काम से फ्री होकर 7 बजे के करीब घर लौट रहा था, तब उसने दीवा के घर पर ताला देखा। किसी के घर खाना डिलीवर करते हुए जब आर्यांश 7:30 के बाद वापस उसके घर के सामने से गुजरा तब भी घर लॉक था। ऊपर से अस्पताल में भी भीड़ लगी हुई थी। इसी से आर्यांश समझ गया था कि दीवा को आने में देर हो जाएगी। इतना काम करने के बाद खाना बनाना उसके लिए मुश्किल होने वाला था। ये सोचकर आर्यांश घर पहुंचा।
वो सुमन से खाना बनाने के लिए कहने जा रहा था पर सुमन को नींद आई हुई थी। ऐसे में आर्यांश ने खुद दीवा की पसंद के हिसाब से जल्दी से खाना बनाया और उसके घर के सामने पहुंच गया था। दीवा से ठीक 5 मिनट पहले ही आर्यांश वहां पर पहुंचा था और उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। एक नज़र दीवा के घर की तरफ देखने के बाद आर्यांश वहां से अपने घर चला गया। उसने डिनर किया और फिर वापस अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ डिनर करने के बाद दीवा ने शिव को सुलाया और फिर खुद घर के ही लिविंग रूम में टहल रही थी। वो आर्यांश के बारे में सोच रही थी। क्या ये खाना सच में सुमन माँ ने अपनी मर्जी से बनाया था या फिर आर्यांश ने जिप की थी? नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सुमन माँ ने मुझे हॉस्पिटल में भी खाने के लिए इनवाइट किया था। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए उन्होंने घर पर ही भिजवा दिया होगा। उससे मेरी परवाह नहीं है और उसके चेहरे की अकड़ देखकर मुझे और भी गुस्सा आता है। दीवा ने अपना सिर झटका और खुद को आर्यांश के ख्यालों से आज़ाद किया। इसी दौरान दीवा को याद आया कि वो आर्यांश के बारे में कपूर फैमिली से बात करने वाली थी। दीवा के पास किसी और के नंबर नहीं थे, बस वर्तिका के ही कॉन्टैक्ट नंबर थे। दीवा ने तुरंत वर्तिका को कॉल किया। वहीं आर्यांश के जाने के बाद वर्तिका कपूर मेंशन में ही शिफ्ट हो गई थी ताकि समीक्षा को अकेलापन महसूस ना हो। रात को वर्तिका और समीक्षा एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। अचानक दीवा का कॉल आने पर वर्तिका चौंक गई थी। किसका कॉल है जो मुंह बन गया? समीक्षा ने उसका चेहरा देखकर पूछा। दीवा का कॉल है। अजीब बात है, उसने पिछले 3 सालों में कभी मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया। उसका आखिरी कॉल तब आया था जब उसने भाई की तबीयत के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था और भाई तब तक हमें छोड़कर जा चुके थे, वर्तिका ने जवाब दिया। हाँ तो रिसीव करो, हो सकता है उसे आर्यांश के बारे में कुछ पता चला होगा। आर्यांश उसे बहुत प्यार करता था, उसी ने उसे कॉन्टैक्ट किया होगा, समीक्षा बेचैन होकर बोली और खुद ही वर्तिका का कॉल रिसीव करके उसे स्पीकर पर डाल दिया था। वर्तिका हल्का सा मुस्कुराई और नरम लहजे में बोली, कैसी हो तुम दीवा? मैं ठीक हूँ, बस एक प्रोजेक्ट के चलते बाहर आई हुई थी, दीवा ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर आर्यांश के बारे में कैसे शुरुआत करे। कुछ पल रुकने के बाद उसने पूछा, अच्छा क्या आर्यांश तुम लोगों से बात कर रहा है? आर्यांश का जिक्र होते ही वर्तिका और समीक्षा दोनों के ही चेहरे उतर गए थे। वर्तिका के कोई जवाब देने से पहले ही समीक्षा बोल पड़ी, पिछले 3 सालों से उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही हूँ मैं। दीवा, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर तुम्हें आर्यांश का कॉल आया है या उसके बारे में ज़रा भी पता है तो उसने जो भी किया उसे सोचकर गुस्सा होने के बजाय उससे बात करना। मुझे बताना कि वो कहाँ है, प्लीज़ हमारी हेल्प करना। समीक्षा की आवाज़ ही ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो आर्यांश के लिए किस कदर तड़प रही थी। जिस तरह से पिछले 3 सालों से आर्यांश ने उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया था, ऊपर से वो खुद ही इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी रहा था, उससे दीवा को ये समझते देर नहीं लगी कि आर्यांश जानबूझकर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। मुझे बताना चाहिए या नहीं, दीवा मन ही मन बोली। दीवा कुछ पल के लिए कश्मकश में आ गई थी, लेकिन फिर उसे आर्यांश का वेटर के तौर पर काम करना, मेडिकल स्टोर का बिल ना चुका पाना और सुमन की बीमार हालत याद आ गई थी। आर्यांश अपनी जिद और अकड़ में कभी अपनी फैमिली की हेल्प नहीं लेने वाला था और उसे देखने के बाद दीवा भी नहीं चाहती थी कि वो इतने मुश्किल तरीके से सर्वाइव करे। दीवा ने उन्हें आर्यांश के बारे में बताने का फैसला कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि अगले ही पल उसका फैसला बदल जाए, दीवा जल्दी से एक सांस में बोली, वो पेलिंग में है, सिक्किम के पेलिंग में। प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे नहीं बताएंगी कि मैंने आपको उसका एड्रेस दिया है। आई प्रॉमिस, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच बेटा, मैं जानती हूँ आर्यांश ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसके बारे में सोच रही हो, तुमने हमारा सोचा, समीक्षा ने भारी आवाज में कहा। दीवा ने आर्यांश का पूरा एड्रेस उन्हें बता दिया था,
दीवा से बात करके समीक्षा की आंखों में आंसू थे और वो इस वक्त आर्यांश से मिलने निकलना चाहती थी। समीक्षा जल्दी से खड़ी हुई लेकिन वर्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वर्तिका मायूस स्वर में बोली, दीवा ने भाई का एड्रेस दिया है, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि हम उन तक पहुंचे, वो गुस्सा करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, अगर इस बार मुझे आर्यांश के लिए तुम्हारे दादाजी से भी लड़ना पड़े तो मुझे मंजूर है। वैसे भी काफी वक्त बीत गया है और मुझे अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अब तक उसने अच्छा खासा खुद को प्रूव कर दिया होगा, समीक्षा ने सख्त आवाज में कहा और वर्तिका का हाथ झटक कर आर्यांश से मिलने की तैयारी करने जाने लगी। वर्तिका समीक्षा और आर्यांश के लिए परेशान थी, उसे यही लग रहा था कि समीक्षा को आर्यांश के पास नहीं जाना चाहिए। वहीं दीवा इस वक्त उलझन में खड़ी थी। उसने आर्यांश के बारे में उसकी फैमिली को बता तो दिया था लेकिन साथ ही उसे डर लग रहा था कि कहीं गलती से भी समीक्षा आर्यांश को उसका नाम ना बता दे। आई होप कि तुम समझोगे कि ये मैंने तुम्हारे भले के लिए ही किया है, दीवा ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। कई बार हम जानबूझकर किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते और दीवा ने भी अपनी नादानी में आर्यांश के बारे में उसकी फैमिली को बता दिया है। बेचारी समीक्षा, उसका दिल टूट जाएगा जब वो आर्यांश को ऐसे हाल में देखेगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।